जाती है, मांग बढ़ती जाती है। उसी प्रकार से जितना ही मुझे भोग मिला, जितनी ही सुविधा मिली, उसके अनुसार मेरे मन में विषय की लालसा और अधिक और बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। तब इतना जब कह लिए, यहाँ तक तो अनुताप का वर्णन किया। अनुताप का अर्थ है प्रायश्चित, 8 श्लोकों में वर्णन किए। अब विवेक का वर्णन कर रहे हैं, इनके हृदय में जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है उसको कह रहे हैं। और यदि ये प्रश्न किया जाए कि ठीक है, पहले उर्वशी ने आपके चित्त को आकृष्ट किया था, लेकिन अब तो आपका चित्त ठीक है ना, तब तो आप ऐसी बात कह रहे हैं, तो कहते हैं हाँ। और एक सिद्धांत दे रहे हैं कि इस संसार में भगवान विष्णु की आराधना ही एकमात्र जीव का कर्तव्य है, और भगवान ही किसी के चित्त को विषय भोग से मुक्त कर सकते हैं, और किसी उपाय से नहीं। किसी उपदेश से या किसी देवता के भजन से कभी भी संसार से मन नहीं हट सकता है। भगवान की कृपा जब होती है, प्रभु प्रसन्न होते हैं, विष्णु प्रसन्न होते हैं, तभी जीव का मन संसार से मुक्त होता है। तो अपनी इस दशा के विषय में महाराज पुरुषोत्तम भगवान की कृपा का अनुभव कर रहे हैं और कहते हैं, निश्चल्यापहृतं चित्तं कोन्वन्यो मोचितुं प्रभुः आत्मा रामेश्वरमृते भगवन्तं अधोक्षजम्। भगवान अधोक्षज के बिना कौन है समर्थ जो दूसरे के चित्त को मुक्त कर सके स्त्री में से। पुंसचली के द्वारा अपहृत चित्त को कौन दूसरा व्यक्ति मुक्त कर सकता है? देवता मुक्त नहीं कर सकते हैं, और अपने प्रयास से तो मुक्त हो भी नहीं सकता। अपने प्रयास व्यर्थ है, देवताओं के उपदेश से भी कुछ नहीं होगा। दो लोग सहायता किए तो पहले तो उर्वशी ने उपदेश दिया था। उर्वशी एक देवी है, और वह भी वैदिक सूक्त के द्वारा इनको उपदेश कर रही है। वह जो बात उर्वशी बोल रही थी वह वेद से पढ़ी थी, वेद के श्लोकों को ही महाराज पूर्वक सुना रही थी। श्रीपद सिंधु स्वामी जी कहते हैं महाराज पूर्वक के भाव से, महाराज पूर्वक ऐसा सोचते हैं कि भले ही उपदेशक देवता हो उच्च कोटि का और वेद से उपदेश करे, लेकिन उससे भी मन का मोह नहीं जा सकता। उपदेश में वक्तव्य विषय वेद से दिया जा रहा है, वेदा प्रमाण, वेद ही प्रमाण है, परम प्रमाण। वेद का श्लोक बोला जा रहा था और बोलने वाली देवी उर्वशी, फिर भी मेरे मन का मोह नहीं गया, और देवताओं की आराधना करके मैं केवल दुख में पड़ा, सुख नहीं मिला। देवताओं ने मुझे अग्निस्थाली दिया और उस अग्निस्थाली की सहायता से मैं उर्वशी लोक प्राप्त किया, लेकिन आज तक मैं जलता ही रहा, जलता ही रहा। इसी बात को कहने के लिए भगवान का पार्थक्य बता रहे हैं और भगवान के विषय में कुछ विशेषण दे रहे हैं, अधोक्षजम और आत्मा रामेश्वरम। आत्मा राम का अर्थ है जिसका चित्त कभी भी सांसारिक भोगों में नहीं लगता है, भगवान में ही जिसका अभिनिवेश है, संसार के भोगों को अति तुच्छ समझ लिया है और भगवान के उत्कृष्टता का, दिव्यता का जिस अनुभव हो गया है, और रात दिन केवल भगवान की भक्ति में रहता है, उसको आत्मा राम कहते हैं। आत्मा में जो रमण करता है, जितने भी आत्मा राम है जो संसार के भोगों में नहीं रमते हैं, उनके उपास्य, उनके द्वारा आस्वादनीय या आराध्य भगवान विष्णु है, कृष्ण है, तो उनको आत्मा रामेश्वरम का, आत्मा रामों के ईश्वर, परम आकर्षक, परम मधुर, परम समर्थ और प्राकृत इंद्रियों से अगोचर, परम सुंदर भगवान विष्णु के अलावा कोई भी समर्थ नहीं है किसी के चित्त को संसार से मुक्त करने में। स्त्री अथवा किसी भी वस्तु की कामना से, वासना से मुक्त करने में केवल विष्णु समर्थ है। इसके द्वारा महाराज पूर्वा एक सिद्धांत दे रहे हैं कि अन्य देवाराधना या अन्य उपदेश श्रवण आदि सब व्यर्थ है। यदि कोई कल्याण चाहता है तो उसे अधोक्षर की आराधना करनी चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान की कृपा से ही मुक्ति हो सकती है। पूर्व में जो महामोह महाराज दुर्गा का था, तो उस समय उर्वशी ने उपदेश दिया था जैसा आपने सुना था, लेकिन उस दिन भी इनका महामोह नहीं गया, फिर भी उर्वशी के लिए रोते रहे। तो उसने कहा कि एक वर्ष में एक बार हमारे साथ आपकी भेंट होगी, वर्ष के अंत में इसी स्थान पर। उसे थोड़ी सी सांत्वना मिली, लेकिन ज्ञान नहीं हुआ। उसके बाद देवताओं ने इनकी सहायता की, तो और विषय में झोंक दिए, उपाय दिए उर्वशी को प्राप्त करने के लिए। तो इन दोनों पर उपदेश, वैदिक उपदेश पर और देवता पर एक प्रकार का कटाक्ष है पूर्वा महाराज का, ये अकिंचित कर है। कोई किसी देवता की आराधना कर रहा है तो देवता उसे मुक्त नहीं कर सकते, कभी मुक्त नहीं कर सकते। थोड़ा सा भोग दे सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, लेकिन जन्म मरण से मुक्त नहीं करेंगे, वासनाओं से मुक्त नहीं करेंगे। केवल भगवान विष्णु मुक्त करने में समर्थ हैं। कौन अन्य मोचितुम प्रभु, कौन है जो मन को विषय की आसक्ति से मुक्त कर सकते हैं? अर्थात कोई नहीं, केवल भगवान अभोक्षक मुक्त कर सकते हैं। इसलिए आराध्य विष्णु है और कोई नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत बड़ा अनुभवी व्यक्ति अपने जीवन का अनुभव दे रहा है और दूसरा नहीं मुक्त कर सकता है, उसी को कह रहे हैं बोधितस्यापि दिव्या में सुप्त वाक्य न दुर्मते है मनोगतो महामोहो नापया त्यजितात्मनः। यदि दूसरे उपाय से अज्ञान चला जाता तो मेरे सामने वो दृश्य उपस्थित हुआ था, मुझे तो देवी उपदेश कर रही थी और वही वेद से बोल रही थी। आजकल तो बहुत सी देवियां कथा कहने वाली हो गई हैं और सब वेदहीन वाक्य बोलते, वेद नहीं अपने अपने मन गढ़ंत बातें बोलते। आज के युग में यह एक फैशन हो गया है कि उपदेश करो चाहे कुछ करो, बस गान बजान करके पार करो, तबला बजाओ, हारमोनियम बजाओ, सारंगी बजाओ, और सुनने वाले लोग भी चाहते हैं कुछ गान बजान हो। यह विवेक नहीं क्या गाना चाहिए, कुछ भी हो, ताल तरंग कुछ भी चले, नाचे गावे तोरे तान होकर करे दुनिया मान। बस गाओ। कुछ दिन में तो लगता है कि प्रोफेसरों को भी बाध्य किया जाएगा, लेक्चरों को, कि आप लोग पढ़ाते समय हारमोनियम बजाइए, तबला बजाइए, तब लड़के पढ़ेंगे नहीं तो नहीं आएंगे। हो सकता है ऐसा उनको करना पड़ेगी चीज। या डॉक्टर दवा दे रहा है तो कहा जाएगा कि बीच में कुछ बाजा चालू करो, बजाओ, इसके बाद ऑपरेशन करो, चाहे ऑपरेशन बीच में छोड़ करके ही कुछ गाओ, तब तो रोगी गया इस दुनिया से। श्रोता तो एक रोगी की तरह है ना, जब दवा दे रहे हैं तो दवा दीजिए अच्छा से, नहीं कि बीच में नौटंकी जान बजान चालू हुआ, कव्वाली गजल या हुआ, और उसी को समझ लेते हाँ जग देखा है सुना है। जग में अब इतना ही नहीं, अब तो फिजिकल कसरत तक होता है, तो चरखा चलते हैं, जब चरखा चलते हैं, पकौड़ियां बिकती हैं, और तितिहरी जा बजा करके घर लौट गए सुनकर, जो भी 10-20 रुपया था वो भी दे आए खत्म हो गए, और समझते हैं तर गए, बस जग सुन आए, और जो पहले की वासनाएं रहती हैं जैसे कितने और रह जाती हैं। एक आदमी भी किसी यज्ञ में जा करके खैनी नहीं छोड़ पाता, क्या और वासना छोड़ेगा? जो जीवन में दोष रहता है रह ही जाता, बल्कि खैनी खाने वाले लोग यज्ञों में कथाओं में तंबाकू खा करके बैठते हैं, ऐसा देखा गया इस तरह की। और ये तो साधारण तंबाकू नहीं छोड़ सकते तो और क्या छोड़ेंगे, नहीं फिर भी मन में होता है कि मैं सत्संगी हूँ, सत्संग चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आराधना भगवान की करनी चाहिए, भगवान की शक्ति है, उनमें अद्भुत प्रकाश है, जो सूर्य के सामने आने पर प्रकाश हो ही जाएगा, वैसे ही भगवान की भक्ति करने पर तो जीवन का दोष जाएगा। महाराज पुरुष कह रहे हैं कि विद्यायपि बोधितस्यापि सुक्तवाक्येनापि, अपि तीन जगह लगाना पड़ेगा, देवी प्रवचन कर रही थी मेरे लिए और सुक्तवाक्येनापि और वो भी बोधितस्यापि मुझे पूर्ण रूप से सुना रही, फिर भी मे दुर्मते मनोगतो महामोहो न अपयाति, क्योंकि मैं अजितात्मा हूँ, मैं इंद्रियों के पराधीन हूँ, यह मन के पराधीन हूँ, मेरा मोह नहीं जा रहा है। इसको वर्तमान क्रिया में क्यों कह रहे हैं, इसका कारण यह है कि इतना ज्यादा मोह था कि इनको अनुभव हो रहा है कि अभी भी मैं फंसा हुआ, जैसे कोई भयानक सपना देख लेता है, तो कहीं देखा सपना कि कोई चोर मुझे मार रहा है या बाघ है आ गया है, सर्प मुझे दस लिया है, तो जगने के बाद भी भय बना रहता है, ज्ञान होता है कि सांप नहीं है बाघ नहीं है, लेकिन फिर भी सपना में देखे हुए विकट दृश्य का प्रभाव अभी जगने पर भी रहता है। तो वही महाराज पुनर्वा को अनुभव हो रहा है कि ओहो हो अभी मेरे मन से मोह निकल नहीं रहा है, वो निकल चुका है पूरा पूरा, परंतु इतना अधिक प्रभाव उसका पड़ा था कि उसको वर्तमान क्रिया में कहते न अपयाति, नहीं जा रहा है, क्योंकि मैं इंद्रियों का परतंत्र। जब इस प्रकार का विवेक हुआ तो उस विवेक की दशा में महाराज विषय की ही निंदा कर रहे थे, अपनी भी निंदा की है, लेकिन अपना निंदा एक संस्कृत मुक्ति कहते अभिनय न आह, अभिनय के द्वारा, अभिनय का अर्थ ये होता है कि हम दूसरे तरह से अपनी निंदा किए, डायरेक्ट नहीं, तो मुख्य रूप से निंदा हो रही थी उर्वशी की। यदि उर्वशी नहीं आई होती, उससे मैं बात नहीं किया होता तो मेरा चित नहीं गया होता, उनके अब तक कहने का आशय यह था, लेकिन अब मनोभाव बदला है, तो वे अपना दोष डायरेक्ट दे रहे हैं, यदि अपने विषय में यहां बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहां भी अभिनय के द्वारा अपना दोष कह रहे हैं, उधर अभिनय के द्वारा उर्वशी का दोष कह रहे हैं, तो अब अभिनय के द्वारा वे अपने दोष को प्रकट कर रहे हैं, या किसी भी अविवेकी व्यक्ति के दोष का निरूपण कर रहे हैं। किमे तया नोपकृतम रज्ज्वावा सर्प चेत सह रज्जु स्वरूप विदुषो यो हम जगदिंद्रियः नह एतय किम अपकृतम, हम लोगों का न कार्य अस्माकम बहुवचन में न अस्माकम एतया उर्वश्या किम अपकृतम न किमपि, उर्वशी के द्वारा हमारा क्या अपकार हुआ है, कुछ भी नहीं अपकार हुआ। अब तक सारा यही वर्णन कर रहे थे कि उर्वशी से मेरा अपकार हुआ है, मेरी हानि हुई है, अब कह रहे हैं कि इसने क्या हमारी हानि किया है, कुछ नहीं। जब यह अहम अजितेंद्रिय, मैं अजितेंद्रिय हूं, इंद्रियों का गुलाम हूं और मन के वश में हूं, तो वास्तव में मैंने अपने अज्ञान से अपनी हानि किया है, उर्वशी ने मेरा अपकार नहीं किया है, मैंने अपने आप अपना अपकार किया। एक दृष्टांत द्वारा इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं। रज्जु स्वरूप विदुष सर्प तेज रज्व किम अपकृतम न किंचित इत्यर्थ। यदि कोई व्यक्ति थोड़े थोड़े अंधकार में किसी रस्सी को देखता है और उस रस्सी को ही सर्प समझ करके वे गिरे, वह गिरे कहीं या टकरा जाए चौकट से, दीवार से सिर फूट जाए, गिर जाए, तो उसमें उस रस्सी का क्या दोष है? रज्जु स्वरूप अविदुष, रज्जु के तत्व को, रस्सी के स्वभाव को नहीं जानता है, उसको सर्प समझ लिए, सर्प चेत सर्प, तो उसमें न तो सर्प का कोई दोष है, कहीं अगर होगा भी सर्प तो उसका कोई दोष नहीं है, और वर्तमान में जो रस्सी पड़ी हुई है उसका भी कोई दोष नहीं है, और गिरे भागे भराए या चिल्लाए आए रे सांप डस लिया ये कर लिया, तो बेचारा बेचारी रस्सी का क्या दोष है? ये अपना ज्ञान है, उर्वशी जैसी है वैसी है, लेकिन उसके भीतर है क्या, तो मल मूत्र का आधार है, या मेरा अविवेक था कि मैंने उसको मान लिया कि बहुत सुंदरी है, भोग्य है, ये है वो है, नाना प्रकार के सुंदर भावों का आरोप मेरे अविवेकी मन में किया था, वास्तव में उसमें कुछ भी नहीं। तो बहुत सुंदर दृष्टांत दिया जा रहा है, वास्तव में किसी भी विषय में व्यक्ति को अपने दोष को ही स्वीकार करना चाहिए, क्यों मैं उसको सुंदरी समझ लिया, क्यों उसको अच्छा समझ लिया, न तो सौंदर्य है और न तो मनोभाव सुंदर है, दोनों तरह से ठीक नहीं, फिर भी मैं इतना अज्ञानी हूं कि उसको अच्छा समझ लिया तो मेरा दोष है। इस बात को स्थायी रूप से समझने की कोशिश कीजिए, ये घटनाएं होती रहती हैं कभी कभी, कि कभी कोई व्यक्ति रस्सी देखे, चाहे लंबा रस्सी या ऐसे कुंडली बनाया हुआ रस्सी, और भ्रम से यह मान ली कि सांप है और पैर से छू गया है, छू गई है रस्सी, तो आदमी पहले तो घबरा जाएगा, सांप सांप, और इतना कह करके और उसकी दूरी बढ़ाए उसे भागेगा, और भागने में मान लीजिए किसी पत्थर से टकरा जाए या पैर कट जाए, तो उस दशा में यदि पूछा जाए किसका दोष है, तो रस्सी का दोष नहीं है, रस्सी में सर्प बुद्धि करके जो भाग रहा है 100% उसका दोष, उसका अज्ञान। इस प्रकार की एक घटना हमारे गांव में एक बार घटी थी, बहुत वर्ष पहले हम लोग कुछ लड़के वहां पर आग ताप रहे थे, आग नहीं ताप रहे थे, वो गुड़ उतारा गया था कड़ा हमें, इसीलिए उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, ठंडा होगा तो गुड़ बनाने वाले लोग बड़े उदार भाव से आज भी गांव में बांटते, यह एक बहुत सुंदर प्रथा है, वहां जो लोग जूटते हैं तो उनको देवता की तरह, ब्राह्मण की तरह गुड़ दिया जाता है थोड़ा थोड़ा, तो कोई कोई कृपण राज होते हैं वो नहीं बांटते हैं, नहीं तो प्राय सब देते, देना थे जो दिया वही लाभ है, जो खा गए तो बेकार चला गया, दिया हुआ ही कई गुना होकर के आपस वापस मिल गया। तो हम लोग ऐसे गुड़ की प्रतीक्षा में थे, आग भी ताप रहे थे, तब तक एक सर्प दिखाई दिया एक व्यक्ति को, जो गुड़ उतारा था और कड़ाह में ऐसे ऊपर किनारे किनारे खोर रहा था, इसलिए हिंदी शब्द खुरच रहा था, खुरपस, तब तक एक सांप दिखाई दिया, सचमुच के सांप दिखाई दिया, सांप दिखाई दिया बिल्कुल निकट कड़ाह के पास आ रहा था, तब तक वो सांप कह करके भागा, और सांप कह करके भागा तो उसका पैर थोड़ा सा कड़ाह के नुकीले छोर से कट गया थोड़ा सा, और इसके बाद सांप डस दिया, सांप नहीं डसा था बेचारा, वो कड़ा से कट गया था थोड़ा सा पैर, तो सब लोग देखने लगे और जो देखता था कहता था अरे बड़ा कांप गड़ा दिया, जो भी व्यक्ति आग ताप रहा था और सब लोग देखने लगे, जला जला करके चेक हुआ, गन्ने का छिलका जला जला कर पत्ता जला कर देखने लगे, और जो भी बोलता था कहता था वो तो गेहुअन, ये तो गेहुअन दशा है, और ऐसा दर्द गड़ाया है कि अब तो जीवन बचना मुश्किल है। और इतना सुनने पर उस व्यक्ति का तो अब होश उड़ गया, और तो उसे ये आभास हो गया कि मैं मर जाऊंगा मर जाऊंगा मर जाऊंगा, तब ला ला करके मिर्च खिलाने लगे खूब तीखा मिर्च ला ला करके खिलाने लगे लोग, और उसके खिलाने से उसके मुंह में गाज बनने लगा, और लोग पूछते थे तीत लगता, तीत लग रहा है, तीत लग रहा है, तो कहता है ना ना, उसको तो भाव हो गया था कि सर्प डस लिया, तीत तो बहुत लग रहा था, उसके चलते वो गाज फेंकने लगा, तो लोग कहते देखो गाज भी फेंकने लगा, गाज भी फेंकने लगा, ये तो निश्चित सांप काट लिया है, ये कर लिया है। कबीर कहे रात भर जगाते रहो सोए न पाए, सोने पर विष व्याप्त हो जाएगा शरीर में, जगाया न जगाया। और बिल्कुल जब सवेरा हुआ तो देखा गया कि वो जो पैर थोड़ा कटा था उसका हल्का सा चाम वहां सटा हुआ था कड़ा है, वही था गेहुअन सांप। ऐसे तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन रात भर दवाई या पिसना वह देना, दवाइयों ने उसकी हालत खराब कर दी, सांप बेचारा कुछ नहीं किया, तो ये दशा होती है। तो उस समय बताइए उस सर्प के क्या दोष, यदि कोई कहे कि उसको देख कर कैसे हो, तो देखा ही कर हुआ था ना, वो तो दशा नहीं था, कुछ नहीं किया था, तो उस तरह की बात तो रस्सी देख करके भी किसी किसी मन में हो जाती है, रस्सी को घर में पड़ा हुआ देख करके भ्रम हो जाता है कि सांप है सांप है, और भागता है गिरता है, कल कहीं पैर में मोच आ जाती है या सिर फूट जाता है, तो अब रस्सी फोड़िए सिर, उसने पैर में मोच दिया नहीं दिया, भीतर जो अज्ञान बसा हुआ है रज्जू में सर्प बुद्धि हो गए, उससे ये सब घाटा हुआ। कैसे पूछा जाए महाराज पूर्व से इसका अर्थ क्या है, आप अपना दोष स्वीकार कर रहे हैं उर्वशी का नहीं, तो कहते हैं कि उर्वशी में क्या सुंदर चीज है कि मैं मुग्ध हो गया, तो अपना ज्ञान है ना, क्वायम मलि मस कायो दौर्गंध्याध्यात्म को सिखि क्व गुण सौमन अस्याध्यासो विद्या कृत, कहा यह मलिन शरीर, मलि मसह काय, बहुत गंदा शरीर है, एक दौर्गंध्यात्मा है, दौर्गंध्यात्मा का अर्थ आत्मा का अर्थ है कारण, दुर्गंध का कारण है यह शरीर, और कोई वस्तु कहीं पर रख दीजिए उसमें दुर्गंध नहीं आएगी, लेकिन शरीर में डाल लीजिए तो इसके बाद वही सुगंधित वस्तु दुर्गंध में बदल जाएगी, ये दुर्गंध का कारण, लेकिन मैं इसमें सुगंध देख रहा था, यह मेरा अज्ञान, तो मैं अपने अज्ञान से मारा गया, अज्ञान ने मेरी हानि किया, अशुचि यह शरीर, अशुचि अशुद्ध है, आप कितना भी धोया हुआ वस्त्र पहनिए लेकिन कुछ घंटों के बाद यह अशुद्ध हो जाता, अलमीरा में रखा रहे बाहर बक्से में रखा रहे तो कपड़ा शुद्ध रहेगा, लेकिन इस देह पर आते ही फिर अशुद्ध हो जाए, और बस धोने के लिए भेजिए साबुन लगाइए कीजिए, क्यों, क्योंकि अशुद्ध देह का संग किया है कपड़ा, वस्त्र ने संग किया अशुद्ध हो गया, अच्छे अन्न ने इसका संग किया तो मलमूत्र हो जाए, ये अशुचि है, स्वयं ही मल है, मलिन नहीं स्वयं ही यह मल। अच्छा, इस पर यदि यह कहा जाए कि नहीं उर्वशी के सुंदर भाव शब्द विचार आदि आकर्षक हो सकते इस कारण से आपका पतन हुआ, तो नहीं नहीं नहीं, नहीं। कहां सौनस्याद्य भाव, कहां भाव है, ये भाव था कि मैं पीछे पीछे उसके रो रहा था और वो हमको वेद का मंत्र सुना रहे, ये भाव था उसका, सौनस्य का अर्थ है सुंदर मन के भाव, या सौमनस्य का अर्थ है जो स्त्री में गुण है सौमन है, सुमन जैसा, पुष्प जैसा। तो पुष्प में जो सुंदरता या सुगंध आदि रहते हैं वे बहुत दिन नहीं रहते हैं। कितना भी सुंदर फूल हो, जैसे गुलाब का फूल है या बेला, चमेला, चमेली, जो भी, कुछ देर के बाद फूल सूख जाता है और सुगंध भी चली जाती है। स्त्री में या पुरुष में किसी में भी कुछ सौंदर्य है, जवानी में थोड़े दिन के लिए सुंदरता दिखती है, इसके बाद तो सुंदरता चली जाएगी, वो सूख जाएगा शरीर। ऐसा नहीं है कि बूढ़े लोग एकाएक कहीं से भर्ती किए गए हैं। जो लड़के और जवान होते हैं वही एक दिन बूढ़ा होते हैं, धीरे धीरे बुढ़ापा की ओर बढ़ते जाते हैं। स्त्रियों के जो गुण हैं, सुंदरता आदि, ये सौमनस्य है। सौमनस्य का अर्थ सुमन जैसा, पुष्प जैसा, ये रहेंगे नहीं, मुरझा जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। अथवा सौमनस्य का अर्थ सुंदर मन के भाव। गुण सौमनस्य आते हैं, जब ध्यासो विद्या कृपा, मूर्खता से व्यक्ति मान लेता है कि यह स्त्री बहुत सुंदर बोल रही है, हमारे प्रति बहुत प्रेम करती है, ओहो ये तो अरुंधति के समान है, ये तो अनुसुईया के समान है, ये तो ऐसी है, तो ऐसी है, ये सब व्यर्थ बातें। कोई सौमनस्य नहीं होता है, सुंदर भाव नहीं होता है। अथवा व्यक्तिगत रूप से उर्वशी का विचार करें, उस दिन उर्वशी क्या बोली थी, कौन ऐसी स्त्री है जो अपने अनुरक्त न हो जाए, मैं आपके साथ रहूंगी। जाति पाति की भी कोई बात नहीं, मैं बहुत उच्च जाति की हूँ, आप छोटे जाति के हैं, लेकिन फिर भी क्या हुआ, आप बहुत गुणवान है, ये है वो है, इसलिए ऐसे बोल रही। और सुमन में कपट था, और एक दिन छोड़ करके जाने लगी, जब ये रो रहे थे, मर रहे, तो कहती है कि आप मरिए मत, ये मत मरिए, वेद ऐसा कहता है कि स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए, तो उस दिन ऐसे बोल रही। और अब स्त्री तत्व पर भाषण देने लगी, इसको कहते ये सौमनस्य भाव नहीं है, सुंदर मनोभाव नहीं है। लेकिन अविद्या अभ्यास कृत, अविद्या के कारण अभ्यास हो जाता है कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। किसी किसी की स्त्री सुंदर भाव मनोभाव की होती है, लेकिन जनरली जो लोग अपने स्त्री की प्रशंसा करते हैं, अपने पत्नी की, उनको अविद्या के कारण ऐसा अभ्यास होता है। बहुत बहुत तरह से स्त्री की बड़ाई करना, हमेशा कहीं किसी समाज में अपने पुत्र की बड़ाई करना, अपने पत्नी की बड़ाई करना, और प्रकारांतर से उनकी बड़ाई करके अपनी बड़ाई की, ये अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण होता है। न तो स्त्रियों में सुंदरता है और न तो सुंदर मनोभाव है, ये सब अविद्या से अभ्यास किसे कहते हैं, अविद्या। न विद्यते जया सा अविद्या तया, अज्ञान से सब अभ्यास होता है। इसलिए गुणारोप नहीं करना चाहिए संसार में, अच्छा है दोषारोप। किसी की मित्रता में, सुंदरता में या सुंदर मनोभाव में यदि दोषारोप किया जाए तो साधक के लिए बहुत अच्छा है। नहीं 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 नहीं, खतरा है, ठीक नहीं है, अगर ऐसी भावना की जाए तो अच्छा है। दोष बुद्धि करने से, दोष बुद्धि में सत्य सत्य पर भगवान इसी भागवत में कहते हैं, दोष बुद्धि में सत्य पर, जो व्यक्ति दोष बुद्धि करता है संसार में वह फिर आसक्त नहीं होता। दोष बुद्धि का अर्थ निंदा नहीं हुआ, दोष बुद्धि का अर्थ है गुणहीनता की बुद्धि, यह हमारे लिए ठीक नहीं, यह हमारे लिए घातक है, खतरनाक है, ऐसी बुद्धि करना, अगर ऐसी बुद्धि होगी तो वह व्यक्ति फिर आसक्त नहीं हो सकता है। और गुण बुद्धि होगी तब तो उसे फंसना ही फंसना है, तो आसक्त होगा ही सकते है। तो इसीलिए गुण बुद्धि छोड़ करके दोष बुद्धि करनी चाहिए संसार में, पर सबसे दोष बुद्धि होनी चाहिए अपने अज्ञान पर। अविद्या अभ्यास, अभ्यास का अर्थ है मिथ्यारोपण, कहां यह मलिन शरीर, दुर्गंधित शरीर और कहां सौमनस्य आदि गुण, ये गुण बहुत दूर है, कहां है मलिन शरीर, लेकिन अभ्यास से ऐसा कर दिया जाता है कि अच्छा है ये है वो। बहुत बहुत प्रकार से लोगों ने आज तक के वर्णन किया, यह तो स्थिति है जो अज्ञान के कारण अभ्यास हो जाता है। अगर स्वत्व की दृष्टि से देखें तो कौन किसका है, किसका है कौन, पित्रो हो किम स्वम्न भार जाया स्वामी लग्न है स्वगृद्धय हो किमात्मन किम सुहृदान इतो नावश्यते। एक तो गुण का आरोप करते हैं, जहाँ गुण नहीं है गुण बुद्धि करते हैं, जहाँ सौंदर्य नहीं है सौंदर्य बुद्धि करते हैं, और दूसरी बात यह है कि इस संसार में कौन शरीर किसका है यह निश्चय नहीं है, इसलिए भी स्नेह नहीं करना चाहिए। तो कहा तो पित्रो हो किम स्वम्न भार्या या स्वामी लग्न है स्वगृद्धय हो किमात्मन किम सुहृदान इति यो नावश्यते। यह शरीर किसका है, किसका भोग्य है, तो पहले प्रश्न उत्थापन किया जा रहा है, पित्रो किम स्वम, क्या यह माता पिता का धन है शरीर, क्यों, क्योंकि वे जनकत्व, उन्होंने जन्म दिया है, माता पिता के संजोग से यह शरीर बनता है, तो क्या यह शरीर माता पिता का है, कुछ वर्ष तक तो माता पिता कहते हैं मेरा बेटा मेरी बेटी मेरा मेरा करते रहते, मेरा है मेरा है मेरा है, तो किसका है शरीर, माता पिता पहले दावा कर सकते हैं कि मेरा है, तो क्या यह शरीर माता पिता का है, कुछ काल तक तो ऐसा देखा जाता है कि माता पिता गोद में रखते हैं खिलाते हैं पिलाते हैं पढ़ाते हैं, तो वे कहते हैं कि ये मेरा है मेरा है। अच्छा, जब विवाह हो जाता है तो भार्य पत्नी कहती है ये मेरा है, स्व अंग मेरा स्वांग मेरा अपना अभिन्न अंग है ये मेरा है। तो माता पिता का जो स्वत्व है, जो उनकी स्वत्व भावना होती है शिथिल हो जाती है, वे मानने लगते हैं कि अब हमारा कम है ये, अब अपने पत्नी का ज्यादा है, और पत्नी तो ज्यादा क्या वो 100% अपना मानती है, मेरा है और किसी का नहीं। देखिए शास्त्र की शैली, जब वर्णन स्त्री के शरीर का हो रहा था तो ये कायक पुरुष की चर्चा क्यों होने लगी, दिखाने के लिए कोई भेद नहीं है, स्त्री पुरुष में आसक्त है या पुरुष स्त्री में आसक्त है, दोनों ही घातक है दोनों के लिए। तो यहाँ पुरुष के शरीर की बात कही जा रही है, उपलक्षण से स्त्री के शरीर को भी समझ लेना चाहिए। विवाह के पहले माता पिता कहते हैं कि मेरा शरीर, और जब उस लड़के का विवाह हो जाता है और घर में भार्या आ जाती है पत्नी आ जाती है, तो वो पत्नी कहती है मेरा है शरीर, और केवल उस भावना का पोषण वही नहीं करते, सरकार भी कहती है कि हाँ ये पत्नी का है। तो पूछे एक परिवार के साथ है यार, तो परिवार माने स्त्री और एक आध बच्चे दो चार बच्चे बस, परिवार माने ये माता पिता गए छोटे, वही शरीर जो माँ के गर्भ से जन्म लिया, पिता उसके कारण है, पाले पोसे बड़ा किए नाम दिए सब किए, और बाद में पत्नी कहती है मेरा शरीर है, तो क्या यह शरीर भार्या का है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और स्वामी न, क्या स्वामी का है या राजा का शरीर है या काम कराने वाले का शरीर है, कोई वेतन दे करके और इस शरीर को खरीद लेता है। मैंने देखा बनारस में एक लेबर चौक था, कोई कहा लेबर चौक है, जो पूछने लगा लेबर चौक का क्या मतलब है, तो बताया कि यहाँ पर आदमी आकर के बैठे हैं और उनको काम करने के लिए लोग खरीद कर ले जाएंगे कुछ घंटे के लिए, तो जितना घंटा तक वो मजदूरी दे रहा है तो उतने देर के लिए वो आदमी कहता है मेरा आदमी है, मेरा आदमी है। तो क्या उसका है या किसी स्टाफ में है, जैसे मान लीजिए रेल विभाग में है या किसी दूसरे में, तो रेल का बड़ा व्यक्ति कहता है मेरा स्टाफ है, मेरा आदमी है। यदि सेना विभाग में है तो बड़े बड़े कमांडर कहते हैं मेरा आदमी, तो उनका है कि माता पिता का है कि पत्नी का है कि अपने स्वामी का है कि अग्नि का है। अंत में आग में झोंक दिया जाएगा, चिता बनाकर जला दिया जाएगा, तो अग्नि भी कह सकता है कि मेरा है। तो क्या ये आग का है? आग इसको कंज्यूम कर जाएगा, उपभोक्ता उपभोग करेगा, जलाएगा, तो कह सकता है ना अग्नि की मेरा है। तो क्या यह अग्नि का है? स्वगृध या अग्नि में नहीं जलाया जाएगा, यदि मर जाए अनजान जगह पर इसे फेंक दिया जाए तो कुत्ते और गिद्ध खाएंगे इसको। तो अंत में जो कुत्ते और गिद्ध के काम में आएगा तो अभी से वे लोग कहते होंगे कि मेरा है, मेरा है, मेरा है। भले इसको कोई और लोग मेरा मेरा कह लीजिए कुछ दिन, लेकिन अंत में तो हमारा होगा। और ऐसा उनका होगा कि उनके पेट के भीतर चला जाएगा। और लोगों के तो केवल बाहर देह से सकता है, लेकिन उनके तो पेट में जाएगा, उनके शरीर का भिन्न अंग बनकर और उनके मल के रूप में बाहर होगा। ये शरीर की ये दशा। तो क्या कुत्ते और गिद्ध इस आशा में नहीं होंगे? क्या वे आरोप नहीं कर सकते हैं कि यह शरीर मेरा है? मतलब किससे किससे शरीर का संयोग हो रहा है, और जब जब संयोग होता है तो कहता है मेरा है, मेरा है, मेरा मतलब शरीर, या मेरा शरीर है, मेरा शरीर है, मेरा शरीर है, मेरा शरीर है। क्यों आत्मा ना? क्या यह आत्मा का है? जो आत्मा इस देह के भीतर है और इस देह को छोड़ करके जाएगा, जब तक इस देह में है, क्या यह आत्मा का है? आत्मा बोलता है ना मेरा शरीर है। जैसे आप किसी से पूछिए कि आप हाथ हैं, तो आदमी कह देगा, अज्ञानी आदमी भी कह देगा मैं हाथ नहीं हूं, मेरा हाथ है। ठीक है, हाथ हटा दी। पैर को पूछिए, आप पैर हैं? तो कहे क्या पूछ रहा है वो पागल की तरह, मैं पैर हूं कि मेरा पैर है? ये मेरा पैर है, मैं पैर नहीं हूं। सिर के भी विषय में पूछिए तो आदमी कहेगा यह मेरा सिर है। हरे कृष्णा, बैठिए बैठिए, तो मेरा सिर है, मैं सिर नहीं हूं। तो शरीर के जितने भी अंग हैं उनका निरसन करेगा, बाध कर देगा, उसको मैं नहीं कह सकता है, मेरा कहेगा। इसका अर्थ है कि शरीर के भीतर इस शरीर का अधिकारी बैठा हुआ है और कहता है मेरा शरीर, मेरा शरीर, मेरा शरीर, मेरा ये नाम है, मेरा ये नाम है, मेरा ये काम है, मेरी आंख ऐसी है, मेरा पैर ऐसा है, मेरा मस्तक ऐसा है, मेरा पेट ऐसा है। इसका अर्थ है कि शरीर में मैं दूसरा है, शरीर से भिन्न। तो वो तो कह ही रहा है मेरा मेरा, तो क्या शरीर आत्मा का है? लेकिन आत्मा का भी कैसे रहेगा? पहले उसका नहीं था, बाद में भी छीन लिया जाएगा, इसलिए यह अभी पता नहीं चलता है कि आत्मा का है कि किसका है। किम सुहृदम, क्या सुहृदों का है? मामा का, चाचा का, या और जितने भी संबंधी हैं उनका है क्या? नहीं, उनका नहीं। ससुर कह सकते हैं कि ये दामाद मेरा है, बहुत बहुत अधिकार रखते हैं। और आजकल के तो लड़के अपने पिता का आदर उतना नहीं करते हैं जितने ससुर का करते हैं। और ससुर से भी सबसे कड़ा नाता चला है साधु भाई का। सहोदर भाई तो सब गए, अब उनको कोई नहीं पूछता है। साधु भाई बहुत प्रिय है, क्योंकि प्रिया जी का भाई है ना? नहीं, प्रिया जी के बहन का पति। सारा संबंध स्त्री पर आधारित, स्त्री प्रिय है इसलिए उसके बहन का पति ही अपना असली भाई है। और बड़े गर्व से कहा, कभी मैंने वास्तव में ऐसा कभी प्रेम से कहते हुए नहीं सुना है, वो हमारे सहोदर भाई है, वो हमारे भाई है। लेकिन यह बात कहते हुए कई बार सुना, वो हमारे साढ़ू भाई है। और साढ़ू भाई से खूब प्रेम है, गप चलता है चलता है। और सहोदर भाई से तो साल भर में एक बार भेंट हो जाए यही काफी, ऐसा अज्ञान चला। तो ये अलग अलग डाते हैं और कहते हैं शरीर को, मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है, मेरा मेरा में शरीर चल रहा। बचपन में गोद में रहा तो माता जी कहती थी मेरा है, फिर पिताजी कहते हैं मेरा है, नाना नानी कहते हैं मेरा है, दादा दादी कहते हैं कि मेरा है, पत्नी कहने लगती है कि मेरा है, और फिर और गिद्ध कहते हैं, सियार कहते हैं, कुकुर कहते हैं कि मेरा है, अग्नि कहता है कि मेरा है, आत्मा तो कहता ही है कि मेरा है। इति यो नावशीयते, अब तक निश्चय नहीं हुआ कि शरीर किसका है। कहने का अर्थ किसी का नहीं है, यह शरीर किसी का नहीं है, लेकिन कुछ दिन के लिए मेरा है मेरा है मेरा है, और हट जाएगा वो अधिकार। जैसे लगता है कि अब रजिस्ट्रेशन इतने दिन के लिए था, जैसे खेत बेच दिए, पशु बेच दिए, उस पर से अपना अधिकार हट, उस तरह से शरीर है वास्तव में। जब तक संबंध रहता है तब तक ममता रहती है, और संबंध नहीं रहा तो ममता भी नहीं रहती। जैसे मान लीजिए आप अपने घर के किसी पशु को बेच दिए, बैल को बेच दिए, तो बेचने से पहले कहते रहते हैं मेरा बैल है मेरा बैल है मेरा बैल है। एक बार की सच्ची घटना मैं सुना रहा हूँ, यहीं पर रसंदुआ गांव है वहीं पर। तो एक आदमी एक व्यक्ति के यहाँ बैल बेच दिया, बैल बेच दिया तो ले गया, उसको खिलाता पिलाता था, लेकिन बैल एक दिन पगहा से छूट गया, बंधन से छूट गया, तो पूर्व मालिक के यहाँ जा करके खाने लगा नाद में। वो कुछ भूसा रखा हुआ था, खाने लगा, तो पूर्व घर वाले क्या कहते हैं, अरे ओकर बैल है अभी मार मार मार। वो उन्हें घर में कई साल रहा, लेकिन बेच दिया और दो चार दिन के बाद वो बैल आ गया तो कहते हैं कि उसका बैल है आ गया मार 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 हटाओ। अब स्वत्व की भावना समाप्त हो, इस तरह से स्वत्व जाते, और बैल दूसरे का हो गया। इस शरीर पर भी ये बैल ही तो है वास्तव में। कुछ दिन माता पिता कहते हैं मेरा है मेरा है, कुछ दिन वो कहते हैं, कुछ दिन सरकार कहती है, कुछ दिन वो कहता है, उसको वो कहता है, अंत में कृमि बीज भस्म संग, अंत में अग्नि स्थायी रूप से कहता है मेरा है भस्म। या गिद्ध आदि खा लिए तो संतुष्टि का अनुभव करते हैं, भगवान इतना दिन पाल पोस कर हमारा भोजन लाए थे, अब खा लिए ठीक है। या कीड़े जमीन में सारा खाएंगे इस शरीर, ये तो शरीर की दशा है। इसमें क्या स्वत्व है, स्वत्व की भावना की मेरा है मेरा धन है, यह अभी एक परिकल्पना है। तो गुण बुद्धि करना यह भी परिकल्पना है, और स्वत्वाभिमान करना यह भी परिकल्पना है, सब व्यर्थ है। ये शरीर किसका है और किसको इससे सुख हो सकता है, नशवान शरीर है, गंदा शरीर है। ऐसे शरीर में लोग गुण बुद्धि करते हैं कि अच्छा है यह है वह। तस्मिन् कलेवरे मेद्ये तुच्छ निष्ठे विसज्जते, अहो सुभद्रम सुनसम सुस्मितम चमुखाम श्रियः। ऐसे तुच्छ निष्ठ कलेवर में लोग आसक्त हो जाते हैं, कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। कहां भगवान के रूप में आसक्त होना चाहिए और कहां इस संसार के तुच्छ वस्तुओं में। तो शरीर को कहा जा रहा है अमेध्य, और पहले तो कलेवर कहा जा रहा है। कलेवर का अर्थ होता है कवर, आवरण, यह आत्मा का आवरण है, एक दिन गिर जाएगा निश्चित। और अमेध्य है, अमेध्य का अर्थ अपवित्र, किसी भी तरह से शरीर अपवित्र है। कैसे भी विचार करके देखिए, इसमें पवित्र क्या है, शरीर के भीतर आत्मा पवित्र है। जब तक व्यक्ति जीवित है तब तक तो शरीर पवित्र लगता है, लेकिन आत्मा जब शरीर को छोड़ करके चला जाता है तो शरीर वैसे ही रहता है, परंतु फिर भी व्यक्ति उसको छूना नहीं चाहता, छूने की बात छोड़ी उसको देखना तक नहीं चाहता है, आत्मा छोड़ देता है। यदि कोई आदमी मर गया हो और उसके शरीर पर कपड़ा डाला गया और मुख खुला हो, तो कभी कभी अपने स्वजन कहते हैं मुख ढक दो, देखने लायक नहीं, छूने लायक नहीं। उसको छूने के बाद वस्त्र सहित स्नान करते हैं संस्कार करने के बाद, क्या क्या अपवित्रता आ गई, क्योंकि पवित्र अंश जो आत्मा का भगवान का अंश तो चला गया। भगवान परम पवित्र है, परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परमं भवान, भगवान कृष्ण परम पवित्र है और उनका अंश पवित्र है, परंतु यह शरीर तो अपवित्र अमेध्य। यदि आत्मा को माइनस कर दिया जाए शरीर से तो शरीर बहुत अपवित्र है, अपवित्र। तो इस अपवित्र शरीर में और तुच्छ निष्ठ, तुच्छ निष्ठ, निष्ठ का अर्थ है इसकी अंतिम गति क्या होगी, अंतिम पड़ाव क्या होगा शरीर का, तुच्छ, तुच्छ का अर्थ है यहाँ ये, या तो ये भस्म होगा, अंतिम जो शरीर की स्थायी स्थिति है वो है भस्म। शरीर इस रूप में उतने काल तक नहीं रहेगा जितना काल तक भस्म रहेगा। आज भी हम लोग देखते हैं कितने लोगों का शरीर भस्म बनाया हुआ है, जो कहते हैं है भस्म, राख, जलाए जाने पर राख होगा, और कोई जीव अहो स्त्री का मुख कितना सुंदर है, कितनी सुंदर नासिका है, कितनी सुंदर मुस्कान है, सुनतम सुस्मितम, और अंत में यह शरीर भस्म होगा, राख होगा। अच्छा, इस पर एक प्रश्न किया जा सकता, ठीक है जब राख होगा तब होगा, इस समय तो सुंदर है ना, जब तक किसी जीव का मल नहीं बन जाता, राख नहीं बन जाता, कृमि नहीं बन जाता, तब तक के लिए तो शरीर सुंदर है। तुम्हारे पूर्वज कहते हैं कि प्रकृति की दृष्टि से भी यह बिल्कुल सुंदर नहीं। कौ मां सुरुधिर स्नायु मेघो मज्जाशि संघतौ विणमूत्र पूये रमताम कृमीणाम यदंतरम। जब तक यह शरीर कृमि नहीं हो जाता, भस्म नहीं हो जाता और मल नहीं बन जाता है, उस समय भी इसमें कोई सुंदर वस्तु नहीं है, सब कुछ अमेध्य है, तुच्छ है। क्या क्या है शरीर में, तौंग मांस रुधिर स्नायु मेदो मज्जास्थि संघत। सबसे ऊपर शरीर में चर्म है, त्वक, और यदि पूरे चमड़ा को हटा दिया जाए और चाम को एक तरफ रख दिया जाए और उसके बाद दिखाई देगा मांस, मांस ऐसा लगता है जैसे मिट्टी पोत दिया गया है। मांस, मांस को भी यदि हटा करके टोकरी में रख दिया जाए, उसको काटने से रुधिर, रुधिर निकलेगा, खून निकलेगा, खून के मांस के भीतर खून को ढोने वाली नालियां होती है जिनको स्नायु कहते हैं, ताप, रक्त वाहिनी नलियां, और मेद, मेद कहते हैं जो मांस में चर्बी होती है, और मज्जा का अर्थ है जो हड्डी में चर्बी होती है, और अस्थि का अर्थ है हड्डी। इन्हीं सब का तो ये समवेत रूप है। और क्या है शरीर में, चाम है, मांस, खून, स्नायु, मेद, मज्जा और हड्डी। वीण मूत्र पूये रमताम कृमीणम की अदंतरम, और इस शरीर के भीतर जो खाली थैले हैं उनमें क्या है, मल, मूत्र और पी है, और कुछ भी नहीं है इसके भीतर। तो त्वक, मांस, अस्थि आदि से बना है और इसमें वीण मूत्र पुई है। ऐसे शरीर में यदि कोई रमता है, आलिंगन करना चाहता है, चुंबन करना चाहता है, रम रहा है, तो उसमें और मल के कीड़े में क्या अंतर, कियद अंतर, क्या अंतर, कुछ भी नहीं, वो कीड़ा है वास्तव में। इमारत पुरुर्वा अपनी ज्ञानावस्थिति में यह विवेक प्रस्तुत कर रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति स्त्री के शरीर में आसक्त होता है, उसे अच्छा समझता है, तो उसमें और मल के कीड़े में कोई भेद नहीं। मल का कीड़ा भी मल में ही रहता है और मन को उसका संचय करना चाहता है उसी में आनंद मानता है। तो जो व्यक्ति स्त्री या पुरुष किसी के भी शरीर में सुख मानता है तो कीड़ा नहीं है तो क्या है, उसकी चेतना तो एकदम कीड़े जैसी। अथापि नोपसज्जेत स्त्रीषु स्त्रैणेषु चार्थवित् विषयेन्द्रिय संयोगात् मनः क्षुभ्यति नान्यथा। तब एक प्रश्न होता है कि यदि ऐसा ज्ञान हो जाए कि स्त्री का या पुरुष का शरीर इतना तुच्छ है तब तो अपने आप आसक्ति नहीं होगी। तो पूर्वा महाराज कहते हैं नहीं, ज्ञान ही सफिशियंट नहीं है, ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, ज्ञान के साथ साथ दूर होना चाहिए, फिर भी नहीं संग करना चाहिए, फिजिकल संग के लिए कारण देखना सुनना। ऐसा ज्ञान होने के बाद भी स्त्रियों में और स्त्री जीतों में स्त्री के गुलामों में संग नहीं करना चाहिए। और फिर यदि कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ को प्रयोजन को जानता है तो ज्ञानी होते हुए भी चाहिए कि वो दूर रहे, इंद्रियों पर विश्वास न करें। विषय इंद्रिय संयोग मनुष्युति नान्य का, विषयों के साथ जब इंद्रियों का संयोग होता है तभी मन शुद्ध होता है, नहीं तो नहीं शुद्ध होता है। विषय से और इंद्रियों से चिरकालीन परिचय है, बहुत काल से जब ही इंद्रियों को उनके विषय मिलते हैं तब ही मन भी उन विषयों में चला जाता है। इसलिए पूर्वा महाराज कहते हैं कि अर्थवेता अपने प्रयोजन को जानने वाले व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह स्त्रियों से संग न करे, उनके साथ न रहे, और स्त्री में जो आसक्त है उनके साथ भी न रहे। अर्थवेता जो जानता है कि कृष्ण प्रीति ही हमारे जीवन का लक्ष्य है वह भूल करके भी संग न करे, ऐसा करने से तब उसका मन भगवान में रहेगा। इस प्रकार पूर्वा महाराज कह रहे हैं, इनके गाथा का उपसंहार करके भगवान साधु संघ की महिमा बताए। स्त्री और स्त्री जीत दोनों का संग नहीं करना चाहिए, संग करना किसका चाहिए इसके विषय में भगवान के बहुत सुंदर प्रवचन है जिसको हम दूसरे स्थिति में कहेंगे। हरे कृष्ण।